ओम शांति। बाबा ने हमें पहले से बता दिया है कि अंत में क्या क्या होगा, कितना हलचल का समय होगा। भारत में नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, फ्लड्स, आदि आदि, कहाँ अकाल होगा, कहाँ बहुत बारिश होंगी। तो इसी से नेचुरल कैलेमिटीज होंगी और उस समय बाबा के बच्चे तो सेफ रहेंगे और जिनकी लाइन क्लियर होंगी, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, और जो चाहते हैं हम मधुबन पहुंचे वो तो पहुंच जाएंगे, पर जहां भी हो ये ख्याल करना है कि हमें बाबा की याद में रहकर सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए हमारी स्थिति ऐसी ऊंची हो, क्योंकि रक्त की नदियां बहेंगी, हमारे मित्र संबंधी को मरते देखेंगे, उस समय हमें इतना अचल रहना हो, नष्ट मोह रहना है कि बाप की याद रहे। तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी कि हमारा न इस शरीर में मोह हो, न मित्र संबंधी में, न किसी लौकिक अलौकिक में। क्योंकि क्या होता है, जिनको मोह की आदत होती है ना, लौकिक से तोड़कर अलौकिक से मोह जोड़ दे, उनको आदत होती है किसी न किसी व्यक्ति का आधार लेने की। तो लौकिक से टूटता है तो अलौकिक से जुड़ता है, और उस समय हो सकता है खाना पीना ना मिले, शुद्ध पानी ना मिले और शुद्ध हवा भी ना मिले। तो इसलिए हमको इतनी तैयारी करनी है जो देहभान से परे, भूख प्यास नींद से परे। जैसे शुरू में क्या होता था, जब दादियां सेवा पर निकली, कोई स्थान नहीं था, तो दादियां क्या करते थी मालूम है, पत्थर को तकिया बनाकर सोती थी खुले में, या नदी तट पर सेवा के लिए जाते थी और इधर उधर सो जाते थे। मनोहर दादी का अनुभव था, गंगा तट पर सिर्फ दो दीवार पे सोती थी और एक भाई था, चौकी करता था, और उसने मन में सोचा यदि ये देवियां सच्ची है तो मैं जीत जाऊंगा। वो कुश्तीबाज था और जीत गया तो उसकी श्रद्धा बैठ गई कि सचमुच देवियां हैं। तो समझो शुरू शुरू में जो उन्होंने तकलीफ उठाई, एक कमरे में रहते थे और दो जोड़ी कपड़े होते थे, रोज रात को धुलाई करके वहीं सुखाना, वहीं खाना, वहीं पकाना, काफी सहन किया। और बेगरी पाठ था तो पैदल चल के, दादी जान के अपना अनुभव सुनाते थे कितना पैदल जाके सेवा करते थे। और खाने के लिए केला और चने भूंगरे, ऐसे में भी दिन बिताए हैं। तो अंत में भी ऐसे ही होगा, सिर्फ बाबा हमको बहलाने के लिए साक्षात्कार कराएंगे। परंतु फिजिकली तो सफर करना होगा, तो इसके लिए हमें अपनी विदेही अवस्था बनानी है, तैयार रहना है। भूख प्यास नींद से परे। दूसरा, भारत में सिविल वॉर होंगे। अभी भी देखो ना, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा चलता रहता है। अंत में वही होगा जो 1947 में हुआ पार्टीशन के टाइम। कितनी खून की नदियां बही, कितना मास्क पहन के रखना है। कितनी खून की नदियां बही और कितना मारा मार, याग लोटा दिया होता रहा। तो इसलिए हमें ड्रामा को साक्षी होकर देखना होगा, ड्रामा पर पक्का रहना है। हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो देखना है कि कौन क्या पार्ट बजा रहे हैं। और साथ साथ हो सकता है हमारे में इतनी शांति की शक्ति हो जो हम उनके सामने खड़े हो और वो अपना वैर भाव भूल जाए, आपस में लड़ना बंद करें। क्योंकि कईयों का ऐसा अनुभव है कि दो लड़ते थे, ऑस्ट्रेलिया की बात है, दो लड़ते थे क्योंकि एक को आगे जाना था और दूसरा जाने नहीं देता था। तो उन्होंने कार खड़ी कर दी और रास्ते पर ही लड़ना झगड़ना शुरू किया। तो ब्रह्म कुमार भाई था, शांति से खड़ा रहा और दोनों ने लड़ाई बंद कर दी। तो हो सकता है हमारे में इतनी ताकत हो जो, जैसे बाबा कहते हैं ना, अशांति है वहां शांति फैलाओ। जिसको प्यार की प्यास है, जिसको सुख की प्यास है, जिसको आनंद की प्यास है, जिसको जो जरूरत है वो हम उनको दे सके, दूसरा यहां होगा इविल स्पिरिट्स, भटकती आत्माएं, क्योंकि अकाले मृत्यु होंगी बहुत और कईयों की इच्छा यदि पूरी नहीं हुई है तो आत्माएं भटकेंगी और कईयों को तंग करेंगे। स्पेशली जो वीक सोल्स है उनके ऊपर वार करेंगे, इसलिए हमें इतना मजबूत रहना है। जो इविल स्पिरिट हमारे ऊपर वार न करे, ये भी कर्मों का हिसाब किताब होता है ना, जो इविल स्पिरिट उन पर वार करते हैं। हमारे कई बहनों ने अनुभव किया है, अपना अनुभव सुनाती है कि वो जब सोए होते थे ऐसे लगता है जैसे कोई गला दबाता, छाती दबाता है, और वो कितना भी कोशिश करे हाथ उठाने की, चिल्लाने की, चिल्ला नहीं सकते। तो अंत में ऐसे इविल स्पिरिट भी पड़ जाएंगे, तो उस समय अभी भी कोई हमको कहते हैं, हम कहते हैं सोने के पहले ठीक खूब याद में बैठो, और यदि कोई स्पिरिट वार करता है आपके ऊपर तो आप क्या करो, उठ कर बैठ जाओ और उसका सामना करो। कहो मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, भाग जाओ। तो जितना आप शक्तिवान बनेंगे ना, भाग जाएंगा वो। सूरज भाई अपना अनुभव सुनाता था, मैं समझती समाधान में मैंने सुना, इसको कहा कि कोई कहता है मेरे में इविल स्पिरिट है, उसको कहता है बाबा 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 बोलो और भाग जाता है, भाग जाता है। फिर होगा अंदर छुपे हुए पुराने विकारी संस्कार, वो भी जो समझो कई संस्कार हमने दबा के रखे ना, बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए इविल संस्कार उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा। देखो बाहर की मुसीबतों का सामना करना तो सहज हो जाता है, ज्ञान में आने से कईयों को घर वालों का सामना करना पड़ा होगा कि घर वाले कहते ये क्या, देवता की पूजा नहीं करते हैं, नास्तिक बन गए हैं, आपको श्राप मिलेगा देवताओं का। तो शुरू शुरू में घर वालों का सामना करना पड़ा, पीछे धीरे धीरे क्या होता है, अलौकिक परिवार का सामना करना पड़ता है, मतभेद, संस्कार भेद, तो वो सामना करना पड़ता है, और अंत में अपने ही अंदर जो पुराने संस्कार रहे हैं उसका भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए देखना है कि पुराने संस्कार बिल्कुल ना रहे। फिर होगा कर्मों का हिसाब किताब चुक तो करना है, बीमारियां आएंगे। और हम देखना है, सब दादियों का देखा, अंत में कितना समय मास मास तक बीमारी रही, वेंटिलेटर पर रहे या बेहोश रहे, तो शरीर का भी हिसाब किताब तो करना होगा। तो उस समय कर्म भोग को कर्म योग में बदलना है। दादियों का कितना सामना करना पड़ा, परंतु कभी दादियों ने चूचा नहीं की, कंप्लेन नहीं की, शांत में। और प्रकाशमणि दादी का हमने सुना, मैं नहीं थी उस समय, उनकी अंतिम घड़ी में, पर एक ऑस्ट्रेलिया का भाई था, वो कहा कि हम अंत में गए दादी के सामने, उसी समय भी दादी ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी, मतलब इतनी हमारी पावरफुल अवस्था हो जो अंत में और कुछ न आए, बाबा की याद हो और हम औरों को भी पावरफुल दृष्टि दे, इतना कर्म भोग बदल देना है। क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, हर एक के परिवार में कहेंगे हम फलाने को कैंसर है, फलाने को ब्लड प्रेशर है, फलाने को डायबिटीज है, तो ऐसी ऐसी बीमारियां है ज्यादातर। और संबंधों में भी खिटपिट होंगे। आज भी हम न्यूज सुनते हैं कितनी संबंधों में खिटपिट होती है। किसी का किसी के साथ लव हो जाता है तो पत्नी पति को मार देती है, या पति पत्नी को मार देता है, माँ बाप से वर्षा लेने के लिए बच्चे माँ बाप को भी मार देते हैं। और अभी अभी सुना, एक फ्रेंच लेडी ने अडॉप्ट की थी लड़की को, और लड़की को किसी से प्यार हो गया तो वो माँ को पसंद नहीं था, माँ को ही मार दिया। तो क्या है कि ऐसे ऐसे घटनाएं तो होती ही है कि संबंधों में गड़बड़ होने के कारण खून तक करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, संबंधियों के साथ भी रहते तोड़ निभाना है, अच्छा संबंध रखना है और देखना है कि धन वर्षा लेने के लिए झगड़ा ना हो, मारामारी ना हो और मरना ना पड़े। दिन प्रतिदिन हम देखते हैं चोरी, ठगी, झूठ, पाप, व्यभिचार बढ़ता ही जाता है। और हम ऐसे नहीं समझे कि ब्राह्मण है माना सब सदाचारी है। ब्राह्मण भी सब वश हो सकते हैं, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना आदि आदि। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना। आजकल तो फोन द्वारा भी पैसा लूट लेते हैं, कुछ न कुछ लालच देते हैं कि आपको लॉटरी लगती है, इसके लिए ऐसा इतना पैसा दो, आपके लिए विदेश से गिफ्ट आ रही है उसके लिए पैसा दो, और इंडिया में तो कई साधु के वेश में चोर आते हैं कि आपके जितना सोना है दो हम डबल कर देंगे। तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, और डबल करने के बजाय सोने के बदले पीतल का सामान दे दे देते हैं, और एक्सीडेंट्स, क्योंकि आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में मरते हैं लोग, तो इसलिए चलते चलते किसी को ठोकर लगा देते हैं मर जाते हैं। और कार में तो जिसको जहां से आते हैं टर्न ले लेते हैं, स्कूटर पर तो सेफ्टी नहीं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में है। बम्बई में 14 साल का लड़का था, ज्ञान में माँ और बच्चा दोनों ज्ञान में थे, मुरली सुनकर वो लोग घर जाते थे, बस स्टॉप पर बच्चा खड़ा था और बस ऐसे आई जो उसको ठोकर लगाकर ऑन द स्पॉट मर गया। तो ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं और हार्ट अटैक यंग एज में, क्योंकि हम मेडिसिन पढ़ते थे तो कहते थे कि चालीस साल के बाद समझो आपके कोई भी गांठ है तो समझो अनलेस इट इज प्रूव्ड अदरवाइज इट इज कैंसर, के समझ लो कि वो कैंसर ही है, प्रूव करना है कि कैंसर नहीं है, पैथोलॉजी का सैंपल लेकर। तो क्या है कि आजकल चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, तो इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। और माँ बाप बैठे बच्चे मर जाते हैं तो माँ बाप को कितना दुख होता है, मोह है ना, कितनी आश होती है कि लड़का है कमाए करके खिलाएगा, और लड़का मर जाता है, स्पेशली लड़का मर जाता है, बहुत दुख होता है कि हमारा आधार छूट गया। तो हलचल की स्थितियां तो बहुत है, एटमिक वॉर, जहां तक बाबा बताते हैं भारत में तो उसका असर नहीं होगा एटमिक वॉर का, अभी भी आगाहियां आती है अमेरिका और चाइना लड़ेंगे एटमिक वॉर में। तो उसका दूर से भी थोड़ा तो असर होता है, जब देखते भी है या सुनते भी है तो भी दुख होता है। तो इसलिए ये सब के लिए हमें तैयारी रखनी है, हमें अपने आप को एक तो मामा की याद से मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले अमृत वेले का हमारा योग पावरफुल रहे, चलते फिरते। यहाँ तो आपके लिए अभ्यास सहज हो जाएगा चलते फिरते बाबा की याद में रहने का, परंतु वो अभ्यास जहाँ भी जाओ ये करना है। और हमारा जो रूटीन है, अमृत वेला, मुरली के पहले आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, सोने के पहले 10-15 मिनट, खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद। तो जितना याद करेंगे विकर्म भी विनाश होंगे तो शक्तिवान भी बनते जाएंगे। और बाबा ने हमें योग का प्रयोग करने का भी डायरेक्शन दिया है कि मन को ऑर्डर दो, साकार से आकारी, आकारी से निराकारी दुनिया में एक सेकंड में ले जाओ, ये अभ्यास करो ताकि अंत में हम एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सके। क्योंकि बाबा कहते हैं अंत का पेपर होगा सेकंड का, 2-4 मिनट भी लग गई बाबा की याद में तो फेल हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं मन को बिजी रखो, 5 फॉर्म की एक्सरसाइज करो, कई लोग हैं सवेरे 4 से 8 बजे तक साइलेंस में रहते हैं। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी बहुत उसमें पक्की थी, कोई भी इस कमरे में आते थे ना तो कहती थी अर्जन काम है, नहीं मुरली के बाद आना, और अर्जेंट भी काम है तो भी धीरे से बोलो, आवाज से नहीं। और कई लोग हफ्ते में एक दिन साइलेंस का अभ्यास करते हैं, तो याद द्वारा हमें इतना पावरफुल बनना है। जो कोई भी परिस्थिति में हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, परिस्थितियां आएंगी जरूर। बाबा कहते हैं शरीर भया बुढ़ा, तृष्णा भई जवान, हो सकता है, कई प्रकार की तृष्णा। दादी जी हमेशा एग्जाम्पल देती थी कि एक बहन यज्ञ में सरेंडर थी और नेचुरली सरेंडर थी तो सब नियमों का पालन करते थे। फिर बीमार हुई तो बम्बई में KEM हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी और दादी मिलने गई तो उसको इच्छा हुई कि मुझे भेलपूरी खानी है। तो उसने दादी को कहा मुझे भेलपूरी खानी है। उसका लौकिक भी उस समय वहां था। दादी ने कहा मैं तो कल बना के ला सकती हूँ क्योंकि भेलपूरी कोई आसान नहीं है उसी समय ले आने के लिए। कहने मुझे अभी खानी है। तो उसका लौकिक कहे मर जाएंगी तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होंगी। तो ला के बाजार से दिया और उसने खा लिया। तो ये होता है कि तृष्णा होती है तो अंत समय नियम का भंग करने में देरी नहीं लगती है। बहन जी को बहुत नींद आती है तीसरी लाइन में। बहन क्या है नींद क्यों आती है? नींद क्यों आती है? कल भी देखा शाम को बहुत नींद आती थी। आज क्या है? कल तो समझो ट्रेवल करके आए थे, दूर से आए थे, कोई कोई सो रहे थे। आज क्या है? ट्रेवल करके आए हो क्या? दोनों तीसरी लाइन वाले नींद क्यों आती है इतनी? अभी क्लास में नींद आती है, अंत में कैसे तैयार रहेंगे? तो ड्रामा को हमें बहुत पक्का रखना है, साक्षी होकर देखना है। जो सीन हो रही है उसको साक्षी होकर देखना है, न्यारा और प्यारा रहना है। और अशरीरी अवस्था का अभ्यास पक्का हो, क्योंकि जैसे हमने कहा खाना नहीं मिलता है, शरीर के भान में होंगे तो कहेंगे भूख लगी क्या खाऊं, और हिस्ट्री बताती है कि कई बार, एक बार प्लेन में एक्सीडेंट हुआ, काफी मर गए, एक भाई जिंदा था तो वहां कुछ खाना तो नहीं मिलता था बर्फ में, तो साथी का मांस खाया। तो क्या होता है कि अंत में जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर जो भी मिला खा लेंगे, फिर वेजिटेरियन है भूल जाएंगे हम। इसलिए इतनी हमारी अशरीरी अवस्था हो जो हम खाना पीना मिले ना मिले अपने आप को पावरफुल रख सके। ये तीसरी लाइन में क्या है, एक दो को चेप लगाते हैं, अब ये दोनों जाग गई तो चौथी सो गई लगती है। तो इसलिए ड्रामा में हमें बहुत पक्का रखना है, हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखना है, न्यारा रहना है। और बाबा की याद ऐसी पक्की हो जो न सिर्फ हम अपनी अवस्था को अचल अडोल रख सके परंतु दूसरों को भी शक्ति दे सके, क्योंकि अंत में सब हमारे पास क्यों लगेंगे। किसी को बूंद के प्यासे कहते हैं ना, किसी को प्यार का बूंद चाहिए, किसी को सुख का, किसी को शांति का, किसी को दया का, किसी को दुआ का, सब बूंद के प्यासे हमारे पास आएंगे। तो इसलिए उन्हों को देने के लिए हमारे में शक्ति चाहिए, और जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होंगे इतनी हमारे में समर्थ आएंगे। तो कोई भी परिस्थिति में हम डगमग नहीं हो सकते। परीक्षा को खेल समझना है। कई प्रकार के सीन आएंगे, शॉकिंग सीन होंगे, आश्चर्यजनक सीन होंगे, जिसको हम फ्रेंड्स समझते थे वो भी दुश्मन बन जा सकते हैं, जिसको हम अपना भाई या पुत्र समझते थे वो भी दुश्मन बन सकते हैं। क्या है कि ऐसी परिस्थिति में अभी भी देखो पैसे के लिए, वर्षे के लिए कितना करते हैं लोग, प्यार के लिए कितना करते हैं उल्टा सीधा काम। तो उस समय तो और भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं तूफानों को तोहफा समझो, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का साधन समझो। माया को परखना है, इतनी हमारी क्लियर बुद्धि हो जो माया को परख सके। और हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होंगी तो बाबा की टचिंग आएंगी कि उस परिस्थिति में क्या करना है या क्या हो रहा है या माया है या बाबा क्या टचिंग है। क्योंकि माया भी बाबा का रूप लेकर आती है। स्पेशली आजकल कई है बाबा के मीडियम बन गए हैं ना। माया कैसी है, अपने को बाबा का मीडियम खिलाकर मुरली चलाते हैं। हमारे पास मुंबई में एक भाई बहुत पक्का था और एक परिवार भी काफी पक्का था। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो वो भाई कहता है अभी बाबा मेरे से मुरली चलाते हैं। तो रोज बैठकर मुरली लिखता था और एक परिवार उसके पीछे पीछे मुरली सुनने जाता था। सब ओम शांति छूट गए बाबा से। माया ऐसी है, जैसे इसलिए बाबा कहते हैं ना ध्यान दीदार में मत जाओ, वहां भी माया आ सकती है। कि एक माता कहती थी मेरे में मम्मा आती है, और मम्मा आती है और झाड़ू लेकर घर सफाई करते थे मम्मा के साथ। तो क्या है, माया ऐसी ऐसी आती है। इसलिए अंत में तो माया बहुत पावरफुल हो जाएंगी। तो इसलिए हमारी त्रिकालदर्शी अवस्था हो, जो आगे पीछे सब जान सके, कर्म का भी आदि मध्य अंत को जान, कर्म भी साक्षी दृष्टा होके करे। और वर्तमान समय भी पूज्य स्वरूप धारण कर अनेक आत्माओं के आगे हमें दृष्टांत बनना है। और जितना साक्षी बनकर हम कर्म करेंगे ना, तो कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, नहीं तो कर्म बंधनी आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहते कर्म तो करो, संबंध में भी आओ, परिवार में भी रहो, परंतु बंधन में नहीं। तो जितना साक्षी अवस्था में रहकर पाठ बजाएंगे तो टेंशन नहीं रहेगा, न प्रश्न उठेगा। नॉलेजफुल होने के कारण हम सदा निश्चिंत रहेंगे। हमारे सामने तमोगुणी आत्माएं भी आएंगी, परंतु उन्हें के पाठ को शुभ भावना शुभकामना से देखते शांति और शक्ति का दान देना है। इतना स्टॉक हो शांति का और शक्ति का कि औरों को हम दान दे सके और बिल्कुल घबराए नहीं। अंत तक माया भी हमारे साथ बहुत पावरफुल होकर लड़ेंगे। उस समय भी साक्षीपन की स्थिति होगी तो कमल फूल समान सेफ रहेंगे। और विनाश का विकराल रूप होगा। उस समय देह देह के संबंधी वैभव प्रकृति के सब हलचल में होंगी, परंतु मुझे उपराम रहना है। तो उपराम रहने की प्रैक्टिस रहे, यहां देखते हुए हम ऊपर रहे। और जैसे बाबा कहते हैं ये खेल है सुख दुख हार जीत का, तो उसको साक्षीपन कर देखते रहेंगे तो अवस्था एक रस रहेंगी। तो ऐसी पावरफुल स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते सदा याद में मनन मंथन में बिजी रहो, सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना है। और चलते फिरते मैं निराकार ही आत्मा हूं, और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता हूं यह स्मृति रहे। दुनिया में कुछ भी होता रहे, मैं फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सबका पाठ देखती रहूं और सबको सहयोग देती रहूं।
सकास देते रहें। तो साक्षी दृष्टा स्टेज रहेंगे और हम आसपास के वातावरण से सेफ रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कुछ प्रश्न है जो अभी हम दीदी के समक्ष रखेंगे और दीदी हमें उसका बहुत ही एग्जैक्ट उत्तर देंगे, क्योंकि हम सब अभी यहाँ भट्टी करने आए हैं और दीदी के अनुभवों के लाभ लेने का ये बहुत सुंदर अवसर है। तो दीदी, पहला प्रश्न है कि जैसे मेरे किसी कर्म से दो व्यक्ति को, दो आत्माओं को दुख पहुंचा, पहली आत्मा ने मेरे कर्म को लेट गो कर दिया कि चलो जाने दो, और दूसरी आत्मा ने मेरे कर्म को इतनी गंभीरता से ले लिया, वो डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड तक का सोच लिया। तो मैंने तो एक ही कर्म किया लेकिन दोनों आत्माओं ने उसे अलग अलग रूप से लिया, तो मेरे ऊपर कैसा बोझा चढ़ेगा? दोनों के कर्मों के हिसाब से मेरे ऊपर बोझा चढ़ेगा या किस हिसाब से बोझा चढ़ेगा?
देखो, यदि मेरे कोई कर्म से किसी को इतना डिप्रेशन हो गया और सुइसाइड कर लिया तो पाप तो मेरे पर चढ़ेगा, मेरे पर पाप चढ़ेगा। भल करके उसकी भी वीकनेस है कि वो टॉलरेट नहीं कर सका, दूसरा स्ट्रांग था, उसने टॉलरेट कर लिया, समा लिया, लेट गो कर दिया, परंतु आपका कार्य तो कुछ तो गलत था जिससे उसको इतनी रिएक्शन हो गई, तो इसलिए पाप तो चढ़ेगा, तो दोनों का पाप चढ़ेगा, क्योंकि दोनों को दुख तो हुआ होगा ना, उसको भी तो दुख हुआ होगा, लेट गो कर दिया पर दुख तो हुआ होगा। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अपने ऊपर इतना अटेंशन दो जो किसी को दुख न हो, हमारा पाप कर्म न हो।
दीदी, दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम संगठन में रहते हैं तो कई बार हम यज्ञ रक्षक बनने के हिसाब से या किसी हिसाब से सामने वाले की गलती को प्रत्यक्ष करते हैं, निमित्त के सामने, बड़ों के सामने, लेकिन उससे कई बार वातावरण में भारीपन आ जाता है और आपस में मनमुटाव भी हो जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? क्या हम यज्ञ रक्षक बन के सामने वाले की गलती सामने रखें या वातावरण भारी ना हो ये सोच के चुप रहें कि बाबा तो देख रहा है, बाबा सबको देगा, सबके कर्मों का हिसाब देगा, क्या करना चाहिए?
इट डिपेंड्स आपका उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है। इफ आपका रिलेशनशिप फ्रेंडली है तो आप जरूर उनको बोलेंगे तो वो माइंड नहीं करेगा, परंतु आपके रिलेशनशिप में कंपटीशन है या ईगो है, क्योंकि जब दो का ईगो होता है तो टकराता है
जी दीदी,
और वातावरण भारी हो जाता है। तो इसलिए यदि आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो बोलो, डायरेक्ट बोलो। यदि आप समझते हैं कि बहुत डिससर्विस हो रही है तो, और आपका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है तो जरूर सीनियर को बताओ, क्योंकि डिससर्विस तो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सीनियर को बताकर आप छूट गए। फिर
फिर आप छूट जाते हैं
जी।
क्योंकि हो सकता है सीनियर नहीं जानते हो तो वो थोड़ा प्यार से सावधानी देगा या अपनी ऑथोरिटी से सावधानी देगा तो डिस्टर्बेंस होनी तो बंद हो जाएगा।
फिर दीदी जो वातावरण में जो बोझ चढ़ेगा, वातावरण में जो भारीपन आएगा उसका बोझा फिर हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा ना। कई बार फिर दूसरे भी बोलने लग जाते हैं, सब ठीक तो चल रहा था, आप ही ने प्रत्यक्ष कर दिया, सब कुछ कर दिया और सब बिगाड़ दिया। सब ठीक मतलब नॉर्मल तो चल ही रहा था ना, डिस्टर्बेंस कर रहा था वो बाबा देखता, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा था ना। तो फिर
बाहर से ठीक चलता है परंतु डिस्टर्बेंस तो होती
जी।
इसलिए बोलने वाले तो बोलेंगे, हमें माइंड नहीं करना है, हमने अपनी ड्यूटी बजा ली, बड़ों को बोल दिया, हम हल्के हो जाए, हल्के रहें।
दीदी तीसरा प्रश्न है कि हमारे ही हम अपने निज स्वरूप के ही दो फेज देखते हैं पुरुषार्थ में। कई बार हम कोई बात होती है उसको बहुत इजीली समा लेते हैं, बड़ी बात हो छोटी हो, और कई बार हम हल्की सी किसी बात में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, तो हमारी एकरस स्थिति नहीं रह पाती है, कभी बहुत अच्छी होती है कभी एकदम ही हो जाती है। वो नॉर्मल दिनचर्या ही चल रही है, अमृत वेला, मुरली, नुमा श्याम, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, धारणाएं सब अच्छी चल रही है, फिर ये स्थिति में इतना ज्यादा अंतर क्यों हो जाता है कि छोटी बात भी बहुत डिस्टर्ब कर देती है और कई बार बड़ी बात भी हम इजीली संभाल लेते हैं।
यदि हम डिस्टर्ब होते हैं, अपसेट होते हैं, मुरझा जाते हैं, ये हमारी वीकनेस है। अच्छी स्थिति में तो सब अच्छे रहेंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा जब सब कुछ ठीक चलता है तो नहीं चलिए हमारी अवस्था अच्छी रहे, जब कुछ गड़बड़ होती है तब यदि हम अपसेट हो जाते हैं इसका मतलब हमारी नाजुक अवस्था है, हम सेंसिटिव है। बाबा कहते हैं सेंसिटिव नहीं रहना है, सेंसिबल ज्ञानी योगी। तो जितना हम ज्ञानी योगी रहेंगे ना अपनी अवस्था एक रस रहेंगे। आज भी बाबा ने कहा चाहे निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना है। ऐसे नहीं निंदा होने से हमारा चेहरा छोटा हो जाए, मान मिला तो हम खुशी में नाचने लगे। सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति में ये हमारी स्थित प्रज्ञ की फाइनल अवस्था होनी चाहिए। तो ये जितना हम ज्ञानी योगी होंगे ना तो एक रस अवस्था रहे।
दीदी एक जैसे प्रश्न है कि कई बार ब्राह्मण परिवार में ऐसी आत्माएं सामने आती हैं जो 20, 25, 30 वर्षों से ज्ञान में हैं, लेकिन उनकी धारणाएं ऐसी नहीं है जो बाबा को प्रत्यक्ष करे या बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, फिर भी बाबा उन्हें रख रहा है ब्राह्मण परिवार में, अपने घर में भी कई बार उनकी वजह से कई आत्माएं संशय में आ जाती हैं कि ये ऐसे कर्म कर रहे हैं और फिर भी बाबा इनको रख रहा है, तो ऐसा क्यों होता है जब वो 25-30 वर्ष हो गए उनको, उनकी धारणाएं भी वैसी नहीं है और फिर भी उनका जीवन सब अच्छा चल रहा है, वाह वाह हो रही है उनकी, उनकी वजह से दूसरों का जीवन कई बार खराब हो रहा है, संशय में आ जा रहे हैं कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं फिर भी ये बाबा के घर में रहते हैं और एकदम सुरक्षित जगह पे हैं, सेट हैं, तो क्यों ऐसा है, बाबा उनको क्यों नहीं दे रहा कर्मों का फल?
जब दादी जानकी और दादी प्रकाश बने थे ना, यदि दादी जानकी किसी बताती थी या कोई दादी प्रकाशमणि को कहते थे ने, ये मधुबन में रहता है ऐसा है, तो दादी कहती थी 95% तो अच्छे है ना, 5% खराब है। तो दादी इतनी पॉजिटिव रहती थी। और क्या है आजकल मैंने देखा है, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, यज्ञ में भी सतो रजो तमो सब है। और जो तमो है बहुत साल पुराने हैं, उनको हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 25 साल से घर छोड़ दिया है, घर से रिश्ता नहीं रखा है, अब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कभी गलती करते हैं हम उनको 4-6 मास की सजा दे देते हैं कि चलो 4-6 मास आप जाओ अपने घर या कहाँ भी, बाकी तो उनको रखना ही पड़ता है। जैसे बाबा कहते ना पच्छर माल जो देखो जो गौशाला में है ना, कौन सी गाय रहती है जो दूध नहीं देती है, उनको गौशाला में रखते हैं, मार तो नहीं डालते हैं क्योंकि गाय की भारत में तो माता समझकर पूजा करते हैं, दूध नहीं देती है तो भी रख देते हैं, घास खिलाते रहते हैं खिलाते रहते हैं। तो यहाँ यज्ञ में भी हमारे पास कई बुढ़े भी हैं जो कोई काम के नहीं हैं। और भी उनकी सेवा करनी पड़ती है। फिर भी क्योंकि बाबा की सेवा में उन्होंने 20-25 साल दिया है, रखते हैं।
दीदी जैसे जैसे आप योग कराते हैं या कोई भी महारथी योग कराते हैं स्टेज पे, तो एक होते हैं आप दृष्टि देने वाले और नीचे बैठे होते हैं भाई बहन दृष्टि लेने वाले, तो दृष्टि देने वाले क्या संकल्प करते हैं और हम सामने बैठे दृष्टि लेने वालों को क्या संकल्प करना चाहिए, मन में क्या विचार आने चाहिए?
दृष्टि देने वाले को यही समझना है कि मैं बाबा का निमित्त हूँ, बाबा से मुझे शक्ति लेकर देनी है, सभा में देनी है। और दृष्टि लेने वाले को यही समझना है कि बाबा इन द्वारा हमें शक्ति दे रहे हैं, मतलब बाबा जरूर हो बुद्धि में, देने वाले बाबा है, निमित्त लेने वाले या देने वाले हैं। तो इसलिए जो देने वाले की दृष्टि अच्छी है तो उसे प्रभावित नहीं होना है क्योंकि ये बाबा की शक्ति है, और लेने वाले को बाबा से लेना है तो बाबा को बीच में हमेशा रखना है। चाहे कोर्स देते हैं चाहे दृष्टि देते हैं, तो जितना बाबा को बीच में रखते हैं ना तो प्रभावित नहीं होते हैं या मोह नहीं होता है, नहीं तो कहेंगे मेरी टीचर बहुत अच्छी है, वो कोर्स कराती है तो मुझे बहुत क्लियर समझ में आता है, तो ये क्या हुआ उससे प्रभावित हो गए, उसमें मोह पड़ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब लेने वाले को भी ये रखना है ये बाबा का ज्ञान मैं दे रहा हूं, मेरा ज्ञान है या मेरा स्टूडेंट है, जहां मेरा आया गड़बड़ हो गई, मैं और मेरा ना हो।
और दीदी सद्गुरुवार के भोग में जब बाबा के बच्चे बैठते हैं सेंटर्स पे भोग लगाने, तो उनके मन में क्या विचार होने चाहिए? जो गीत बजता है भोग का, उसमें उस समय वो सेंटर्स में जो बाबा के बच्चे बैठे हैं भोग लगाने के लिए निमित्त दीदी के साथ, तो उन भाई बहनों के मन में क्या विचार चलने चाहिए भोग के प्रति? एग्जैक्ट क्या होना चाहिए भोग का विवरण?
जो स्टेज पर बैठने वाले हैं या सामने?
सामने बैठने वाले दीदी,
यही होना चाहिए कि हम भी चले सूक्ष्म वतन में बाबा को भोग लगावे। तो जैसे स्टेज पर बैठने वाली बाबा के पास जाके भोग लगाती है, भल दिव्य दृष्टि से नहीं जा सकते हैं ध्यान में, पर दिव्य बुद्धि से तो हम जा सकते हैं। तो ये फील करना है कि हमें
बाबा के पास
बाबा को भोग लगाना है, हम भी भोग लगा रहे हैं।
दीदी एक और प्रश्न है कि जैसे किसी ने हमको सेवा के लिए ऑफर दिया कि हम भी आके सेवा करना चाहते हैं सेंटर पे, मधुवन में, कहीं भी, लेकिन हमें पता है कि अभी उस आत्मा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो विहंग स्थान पर या सेंटर पे सेवा करे और सारी बातों को समा सके, तो हम उसे सेवा के लिए अभी रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि अभी नहीं जरूरत है, आप बाद में देखेंगे। तो उसको हम सेवा से मना कर रहे हैं, इस वजह से हमारे ऊपर बोझा तो नहीं चढ़ेगा ना?
क्या है, सेंटर में रहने की मना कर सकते हैं, सेवा की मना नहीं कर सकते। कहो घर में रहकर सेवा करो, क्योंकि घर में रहकर भी कई माताएं हैं, आकर घर की सफाई करती है या भोग बढ़ाती है या सब्जियां काटती है, कुछ मदद कर सकती है ना। तो हम उनको टोटली सेवा से
कट नहीं कर,
मना न करें, परंतु जो सेवा वो कर सकती है उसमें जो विशेषता है उसका जरूर लाभ लेवें। और कहो के थोड़ा समय के बाद उसको होप देनी है कि जब आप तैयार हो जाएंगे, जब हमको जरूर होंगी, युक्ति से जब अभी हमको तो जरूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा हैंड की, जब जरूरत होंगी आपको रख लेंगे।
दीदी सेंटरों पे एक सिचुएशन बहुत कॉमन होती जा रही है कि जैसे कई भाई बहने होते हैं जो धन से बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, और कई माताएं भाई बहने होते हैं जो तन और मन से बहुत सहयोग करते हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि जो दीदियां होती हैं वो मतलब बाबा ने भी जैसे कहा था कि कई बार कोई करता है धन से सहयोग तो बाबा भी उसको गद्दी में बिठाते थे कि भाई वो आया है उस स्थान से तो उसको वैसा सम्मान देना पड़ेगा, लेकिन सेंटरों पे फिर ये बात थोड़ी द्वंद्व वाली हो जाती है कि वो धन से कर रहा है तो
उसको ज्यादा मान मिलता है या
हम अपना पूरा तन दे रहे हैं सेंटर पे।
वास्तव में होना नहीं चाहिए, तन से जो सेवा करते हैं उसको भी रिगार्ड देना है, जो धन से करता है उसको भी रिगार्ड देना चाहिए। मैं तो जो तन से ज्यादा सेवा करते हैं उसको ज्यादा रिगार्ड देती हूँ, धन से तो सेवा करने वाले हैं परंतु तन से, मन से, धन से सबसे सेवा करनी है। इसलिए ये नहीं देखने में आना चाहिए कि ये पार्शियलिटी है और कोई धनवान है उनको ज्यादा मिलता है। नहीं, बाबा कहते हैं जिन्होंने मकान बनाए हैं उसके लिए एक रूम अच्छा रखते हैं, ये है क्योंकि उन्होंने मकान बनाने में अपना सहयोग दिया। तो मकान तो नहीं देंगे पर तो कम से कम एक रूम तो उनको देना पड़ता है। क्या है कि लंदन में कईयों ने अपने मकान बेचकर यज्ञ में पैसा दे दिया, तो दादी जानकी ने उनको रहने के लिए परमानेंट स्थान भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने इतना किया ना बाबा के लिए, तो इसलिए बाबा को उसको कम से कम इतना तो सहारा देना पड़े। जैसे यहाँ भी सालगांव में मरिया रहती है, दादी ने उसको मकान दिया है, क्योंकि उसने कोलंबिया में अपना मकान सेंटर के लिए दे दिया, तो दादी ने उसको यहाँ एक स्थान दे दिया है। और उसकी जैसे कि यज्ञ से ही ऑलमोस्ट पालना होती है।
दीदी एक और प्रश्न है सतयुग,
अभी ये लास्ट करें क्योंकि मुझे आज 12:30 बजे दूसरा प्रोग्राम।
सतयुग के आगमन को लेके दीदी, कि बाबा ने तो कह दिया था 100 वर्ष का संगम युग है, तो 1936 से 2036 तक, अभी जैसे 2021 चल रहा है, तो सबके मन में आता है कि भाई कृष्ण का जन्म हुआ नहीं हुआ। कई हमारी भाई बहने कहते हैं हो गया है, कई कहते हैं नहीं हुआ है, कई कहते हैं नहीं, जिस दिन कृष्ण गद्दी में बैठेंगे उस दिन सतयुग आएगा, तो इसकी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए।
सतयुग तब कहेंगे जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे, तब 111 हो। अभी तक ब्रह्मा बाबा का पाठ अव्यक्त रूप से चल रहा है और अंत तक चलेगा, क्योंकि हम लोग जब जाएंगे ऊपर तो धर्मराजपुरी में
ट्रिब्यूनल बैठेगी,
हमको सामना करना पड़ेगा धर्मराज का। तो इसलिए अभी तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।